मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 20 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दो मित्रों का भी स्वागत करता हूं। ये दोस्त हैं मुकेश कुमार, आपका गांव है विक्रम जिला पटना बिहार से, और विवेक पाल बक्सर बिहार से। इन दोनों मित्रों ने 15 मार्च से 29 मार्च के बीच जो एकेडमी की क्लासेस होने वाली हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य विषय के तहत मैं राज्यसभा के राजनीतिकरण इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। और इस विषय पर क्यों बात कर रहा हूं, आप जानते हैं कि कल मैंने इसी विषय को उठाया था, लेकिन कल मैंने एक अलग एंगल से आपसे बात की थी। आज मैं उसके थोड़े से जो मूलभूत एंगल हैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा, जो बेसिकली राजनीति का एंगल है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, खासकर उन स्टूडेंट से जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, कि मित्रों कल मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि प्लीज आप सब राज्यसभा वाले लेक्चर को जरूर सुने और ध्यान से सुने। कल मुझे ऐसे 2-3 प्रतिक्रियाएं स्टूडेंट्स की मिली जिन्होंने इस पर अमल किया, और अमल करने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ इसके बारे में उन्होंने मुझे सूचित किया। और 2-3 जिन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी वो बहुत ही सकारात्मक और उत्साहित करने वाली प्रतिक्रियाएं थी। दोस्तों आज मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूं अपने उन सभी ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट से कि अगर आपने ऐसा नहीं किया हो तो प्लीज आज करें। देखिए ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो सब आपको फायदे अलग ढंग से पहुंचाएंगे ही, लेकिन डेली ऑडियो लेक्चर आपको छोड़ना नहीं है, आप इसके तो अभिन्न अंग है, ये आपको सुनना ही है। और यहां मैं जो भी इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट के लिए दे रहा हूं ये मान करके चलिए कि यह भी आपके लिए एक अनिवार्य जैसा है, और प्लीज उसे आप फॉलो करें। राज्यसभा पर आप लेक्चर सुने और लेक्चर सुनने के बाद मुझे बताएं भी कि आपको इससे क्या कुछ अलग तरीके का लाभ मिल रहा है, क्या अब आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, क्या अब राज्यसभा से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है सिविल सर्विस की दृष्टि से तो क्या आपको वे प्रश्न समझ में आ जाएंगे और आप उन प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में खुद को पाएंगे। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आप सबसे जानना चाहूंगा। तो दोस्तों आइए इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं कुछ दूसरी जो खबरें हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। खबरें बहुत सामान्य सी हैं। एक खबर तो यही है कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 50 साल उसके इस बार हो गए हैं और वो अब तो गोवा में ही होने लगा है। इससे पहले जो महोत्सव हुआ करता था ये अलग अलग हमारे शहरों में हुआ करता था, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, इन सब शहरों में हुआ करता था और मुझे इनमें से कई शहरों में इस महोत्सव में जाने का अवसर भी मिला है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये खबर आगे क्या रूप लेती है। हम लोगों के समय में इन महोत्सव पर कभी कभी एकाध दो प्रश्न प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते थे, अब इस तरह के प्रश्न नहीं आ रहे, लेकिन चूंकि ये 50वां महोत्सव है तो हो सकता है कि इस पर कोई प्रश्न बने। जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं आप सबसे उसकी चर्चा करूंगा। आपने ये भी खबर में देखा कि जो सेरोगेसी विनियमन विधेयक है वो राज्यसभा में है, इस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं जब ये लोकसभा से पारित हुआ था, और देखते हैं वहां से भी जब पारित होने के बाद अगर कुछ और ऐसी बात हुई तो हम लोग इस पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि एक जो इम्पोर्टेंट खबर है, हालांकि अभी इसे मेच्योर होना है, और वो है कि जो श्रीलंका के अभी जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वे अपनी पहली विदेश यात्रा भारत से शुरू कर रहे हैं। ये एक मतलब आप यूं कह लीजिए कि एक डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन ये रिजल्ट आए थे मैंने आपको बताया था कि ये जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया जी ये प्रो चीन हैं, इनके जो बड़े भाई भी राष्ट्रपति रहे हैं काफी समय तक, और वो उन्हीं के समय में जो चीन है और श्रीलंका है उनके संबंध बहुत नज़दीक के हुए, और जो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका का वो उन्होंने चीन को दे दिया, और उसके बाद से आप कह लीजिए कि वहां के लोगों में असंतोष पैदा हुआ, इसकी चर्चा मैंने पहले की थी। लेकिन भारत के लिए एक संतोष की बात यह है कि उन्होंने भारत आने का निमंत्रण अपनी पहली यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो इसे थोड़ी सी एक संभावना सी बनती है। ऐसा नहीं कि ये कोई हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक स्टेप आप कह लीजिए कि उन्होंने आगे बढ़ाया है, उठाया है। दोस्तों आज मैं थोड़ी सी एक विषय पर आपसे और बात करना चाह रहा हूं, और यह सच पूछिए तो कल के विषय से संबंधित है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। इस तरह के बीच बीच में मैं टेस्ट अब आप लोगों के किया करूंगा और इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। कल मैंने आपको कुछ प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की थी, उसमें एक दो के तो मैंने आपको नाम भी बताए थे, लेकिन एक प्रेस क्लिपिंग्स की चर्चा मैंने जानबूझकर नहीं की थी। और ध्यान होगा आपको कि बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया था, जल परिवहन पर देना होगा अधिक ध्यान, जो विनायक चटर्जी का आर्टिकल था। इसके बारे में मैं कल बिल्कुल साइलेंट था। मेरा यही वाक्य था कि आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपने जब अपना हिसाब किताब लगाया तो आपने इस आर्टिकल को कितना महत्व दिया, मुझे नहीं मालूम। और ये बात खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जो लगभग पिछले 6 महीने से अधिक समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उनका अनुमान लगाना इस आर्टिकल के महत्व के बारे में मुझे लगता है कि अभी संभव नहीं है। तो मित्रों, अगर आप इसका अनुमान नहीं लगा पाए कि यह आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अब विचार ये करना है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए, जबकि यह आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल शीर्षक के आधार पर ही मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, जिस तरीके से इस आर्टिकल को लिखा गया है उसके आधार पर भी, इसमें इतने सारे फैक्ट्स दिए गए हैं और बकायदे तुलनात्मक तरीके से और समीक्षात्मक तरीके से दिए गए हैं कि यह आर्टिकल तो एक है और जल परिवहन पर है, लेकिन यह ढेर सारे टॉपिक्स को कवर करके चलता है, ढेर सारे टॉपिक्स को। तो अब आपको विचार करना है कि आपसे क्यों छूट गया, और अगर आपने इस आर्टिकल को पढ़ा तो फिर आपने क्या इस पर नोट्स बनाए, आप ये देखिए, और अगर नोट्स नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए, और अगर बनाए तो उसमें से किन किन पॉइंट्स को आपने कवर किया है, किन कौन कौन से पॉइंट्स आपने नोट किए हैं, इन सबका आप जायजा लें। ये रिव्यू बीच बीच में हर स्टूडेंट को अपना करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, जो राज्यसभा के राजनीतिकरण से संबंधित है। कल मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि जो राज्यसभा है बेसिकली एक प्रकार से वो बुद्धिजीवी लोगों की सभा है, यानी कि जो बहुत ही समझदार लोग हैं, जो चिंतनशील लोग हैं, जो दूर दृष्टि से संपन्न हैं, जो राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं, उन लोगों की एक सभा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने अभी तक के सफर में राज्यसभा इस तरह की अपनी इमेज को स्थापित नहीं कर पाई है, और अब जो राज्यसभा की आलोचना होने लगी है वो इसी बात को लेकर के कि यह बेसिकली एक तरह से पॉलिटिकल पार्टियों के हितों को साधने का एक अड्डा सा बन गया है। एक अड्डा सा तो नहीं कहना चाहिए, पॉलिटिकल हितों को साधने की एक सभा बन गई है। ये इस रूप में, जैसे मान लीजिए कि किसी को आप लोकसभा की टिकट नहीं दे पा रहे हैं, अब वो नाराज है, या किसी को आप मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, वो नाराज है, तो अब आप क्या करेंगे? तो फिर ये होता है कि भाई ठीक है, आप लोकसभा में के जरिए आप संसद में नहीं पहुंच पाए, तो आप राज्यसभा के जरिए आप संसद में पहुंच जाइए, और राज्यसभा के जरिए तो पहुंचना बहुत आसान भी होता है, तो कम से कम संसद में तो वो पहुंच जाते हैं। कल मैंने देखिए आपसे एक बात बताई थी कि यह इसका बहुत प्रबल पक्ष है, बहुत ही फेवरेबल पक्ष है कि हम राज्यसभा के माध्यम से कुछ सदस्यों को सांसद बना करके उनकी प्रतिभा का लाभ ले पाते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य रहे, बहुत ऐसे लोगों को हम राज्यसभा से लाते हैं और देश को उनकी प्रतिभा का लाभ मिलता है। लेकिन अगर वो राजनीतिक दृष्टि से हो जाता है कि एक तरह से कि नहीं, हम इनको चूंकि लोकसभा में एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम इनको राज्यसभा से ले आते हैं, या ये नाराज न हो जाएं तो हम इनको राज्यसभा से ले आते हैं, तो इस तरह से राज्यसभा का राजनीतिकरण बहुत ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से उसकी जो एक प्रतिभावान जो छवि उभरनी चाहिए सभा की, वो उभरने से वंचित रह गई। दूसरा, आप देखते हैं कि जो स्वरूप भी है वो कोई राजनीति से अलग हटकर नहीं है। उदाहरण के तौर पर कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, आप जानते हैं कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनकर भेजते हैं। अब ये जो विधानसभा के जो सदस्य हैं ये राजनीतिक दलों के हैं, तो राजनीतिक नेता हैं वो, तो अब राजनीतिक नेता जब किसी को वोट देंगे तो वो अपनी राजनीतिक जो लाइन है, उनकी पार्टी ने जो लाइन दी हुई है कि हमें इसको वोट देना है, वो उसी आधार पर चुनाव करेंगे। तो सीधी सी बात है कि राज्यसभा में के लिए कौन चुनकर आएगा, ये पहले से लगभग लगभग निश्चित होता है। तो जब चुनाव ही बिल्कुल राजनीतिक दलों के आधार पर हो रहे हैं तो राज्यसभा का राजनीतिकरण होना मुझे लगता है कि उसकी स्वाभाविक परिणति है, उसको आप कैसे बचा पाएंगे। कल मैंने आप सबसे एक बात की चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा कि जो अगर लोकसभा में पार्टी सत्ता में है, राज्यसभा में उसका बहुमत होता है तो विधेयक पारित होने में बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन यदि ऐसा हुआ कि राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है तो ये तक देखा गया है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक हैं, जो लोकसभा से पारित हो गए हैं, जो राष्ट्रहित में हैं और पूरा देश उसके पक्ष में है, वह विधेयक राजनीति का शिकार होकर के राज्यसभा में पारित होने से रह जाता है। और राज्यसभा में वो इसलिए पारित नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार है उसके पास राज्यसभा में उतने सदस्य नहीं है कि वो वहां से विधेयक को पारित करा सके। तो यहां भी हम देखते हैं कि जो विधेयक हैं वे भी कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली राज्यसभा का जो स्वरूप धीरे धीरे जो इमर्ज होता चला गया है वो हम पाते हैं कि ज्यादातर वो राजनीति के उलझनों में आप कह लीजिए कि उलझता चला गया है। थैंक्स गॉड, एक बात जो बहुत अच्छी रही है, एक अच्छी बात, ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही है, इसीलिए राज्यसभा के बारे में अभी प्रश्न उठ रहा है कि इसे बनाए रखा जाना चाहिए या इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। हालांकि खत्म किया जाना आसान नहीं है और किया भी नहीं जाना चाहिए, आप अपनी तरफ से कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्योंकि संस्था की अपनी उपयोगिता है, इसमें नो डाउट बहुत बड़ी उपयोगिता है। अब हम उस उपयोगिता के लायक उसे कैसे बना रहने देना चाह दे सकते हैं या कैसे हम उसे बनाएं, ये हमारी प्रॉब्लम है, संस्था की अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें देखना होगा कि हम कैसे राज्यसभा के का जो गठन किया गया है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर जो सोचा है उसका हम पूरा लाभ ले सके। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इसके तहत जिन सदस्यों का मनोनयन अभी तक किया गया है, अपवाद स्वरूप अगर हम कुछ सदस्यों को छोड़ दें, केवल अपवाद स्वरूप, तो जो मनोनीत सदस्य रहे हैं वो बहुत ही एक राष्ट्रीय स्तर के रहे हैं, जिनकी एक राष्ट्रीय पहचान रही है, जिनका राष्ट्रीय स्तर रहा है और अपने अपने क्षेत्रों में जिनका एक जबरदस्त योगदान भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सदस्य जब राज्यसभा में पहुंचते हैं तो डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, ये बात अलग है कि सभी सदस्य ऐसा नहीं कर पाते, तो हर क्षेत्र में होता है। तो इस तरीके से मित्रों कुछ बातें मैंने राज्यसभा के बारे में आपके सामने और रखी हैं ताकि तथ्य आपके सामने आपको और भी स्पष्ट हो जाए। लेकिन यहां मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि संस्था अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, हमें उसे महत्वपूर्ण बनाना होता है और राज्यसभा के साथ भी लगभग लगभग यही है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, चिराग ताम्रकर, सौरभ पटेल, आयुष मिश्रा, श्वेता राज, राजकुमार लड्ढा फरीदाबाद से, पूजा कुमारी और सूरज कुमार सोमापुर बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।